राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भंगा भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज अभी 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में ब्रह्मा जी कश्यप और आदित्य के यहाँ भगवान वामन देव का प्रकट्य से पहले गर्भ स्तुति करने के लिए उनके आश्रम में पधारे हैं और ब्रह्मा जी की स्तुति का 3-4 श्लोकों का आज श्रवण करेंगे और फिर हम इसी 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में बलि महाराज की भगवान श्री वामन देव को जो स्तुति है उसका शुभारंभ करेंगे। तो 24वें श्लोक में लिखा है, आदिति दिष्टितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्य गर्भो विज्ञाय समिडे गुह नाम भी। जब ब्रह्मा जी को ये मालूम हुआ कि परम पुरुष भगवान अब आदित्य के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं तो प्रार्थना करने के लिए भगवान के गुह नामों का वर्णन कर रहे हैं। गुह नाम भी ही, जो गोपनीय नामों हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं वास्तव में इसका अर्थ है ब्रह्मा जी ने नाम संकीर्तन किया। तो नाम संकीर्तन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान के दिव्य नामों का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान प्रवेश गर्भ में किए, वहां तो सर्वत्र पहले ही है, कहां से प्रवेश करेंगे, वो तो उधर पहले से भी हैं। तो ये आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की भी स्तुति करने के लिए देवता आएंगे, ये बड़ा लंबा प्रसंग है 10वें स्कंद का 2 अध्याय में। श्री ब्रह्मा वाचा जयोर्गाय भगवन् उरुक्रमे नमोस्तुते नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमो उर्गाय भगवन्, उर्गाय जय उर्गाय, जिसकी उत्तम श्लोकों के द्वारा महिमा गाई जाए। उर्गाय जैसे उरु महान गाय, जिसकी महिमा गाई जाए। उरु क्रमे, जिसके कार्य बड़े अद्भुत हों। नमस्तु, नमस्कार करते हैं, नमः बार बार, प्रण ब्रह्मण देवाय, भगवान के मुख्य जो उद्देश्य है अवतार का वो ब्राह्मणों का आदर करना, जो ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो आध्यात्मिक पथ के ऊपर हैं ऐसे सद ब्राह्मण जो है उनका, उनके भगवान है, ब्राह्मणों के देव है। त्रिगुणाय, प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी है। नमः नमः, बार बार नमस्कार करते हैं। हे महाभगवान, सब आपकी महिमा हो, आपके अद्भुत गुणों की महिमा, आपकी गुणा आपके कार्यों की महिमा जो अद्भुत है, और हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो ब्राह्मणों के देव हैं और तीनों गुणों के स्वामी हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नमस्ते प्रश्ने गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रैनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। हे विष्णु, नमस्ते प्रश्न गर्भाय, आप प्रश्न के यहाँ प्रकट हुए थे और फिर अब आज आदित्य के यहाँ प्रकट हो रहे हैं और भविष्य में आप देवकी के यहाँ प्रकट होके अपने वचन को सत्य करते करेंगे। वेद गर्भाय, वेदों में सदा ही आपको, वेदों में सदा ही आप निवास करते हैं, तो आप वेद गर्भ है, वेदों के अंदर भगवान को भगवान उपस्थित है, वेद गर्भाय कहते हैं। वेद से, और आप सब कुछ परिपूर्ण चित्त शक्ति के द्वारा सब कुछ जानते हैं, ज्ञान स्वरूप है। त्रिनाभाय, त्रिनाभाय जो आपकी नाभि से एक कमल की डंडी निकलती है जिसमें तीनों लोक होते हैं, उसको उसके उत्पन्न करने वाले आप त्रिनाभ हो, त्रिपृष्ठाया। और जो तीन लोक हैं, त्रिपृष्ठाय, त्रिनाभाय, त्रिपृष्ठाय, जो तीनों लोकों से परे हैं, सिपी विष्टा है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, विष्णु है, जो सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु है, मैं आप सर्वव्यापक भगवान वसते सर्वत्र, जो सब जगह प्रविष्ट है, कण कण में प्रविष्ट है, उसको प्रणाम करता हूं, जो जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट है, तीनों लोकों में, तीन लोक जिनकी नाभि में निवास करते हैं परंतु वो तीनों लोकों से परे है। पहले आप प्रश्न के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, आप परम पुरुष और सृष्टा हो, आपको केवल वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है, हम आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान की नाभि में तीनों लोक हैं, लेकिन भगवान उन तीनों से परे हैं, क्योंकि वो तो सदा ही त्रिपृष्ठाय, त्रिपृष्ठाय का मतलब जो तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत है वहां भगवान रहते हैं, त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। सिपी का मतलब है पशु या जीव, और उसके हृदय में भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रकट होते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वम् आद्यन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहो कालो भवान अक्षपिति अक्षपतीश विश्वम श्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम्। हे भगवान, आप आदि हैं, अंत हैं, और इस जगत का मध्य भी हैं। शक्तिम, अनंत शक्तिम, भगवान आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, आप पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और इस आपके लिए कहा जाता है कि आप काल हैं, भवान आप काल हैं, कालो भवान, क्या करते हैं, आक्षप्ति, आक्षप्ति का मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं या बहा देते हैं, ईशा हे स्वामी, विश्वम पूरा विश्व, श्रोतः जैसे कोई नदी तेज भा, नदी की लहरें उठती है ना, ऐसे काल की लहरों से जगत में सब कुछ बह जाता है। यथा अंतः पतितम, यथा जैसे अंतः पतितम, तेज धारा में बहने वाली नदी में जो भी कचरा घास का लकड़ी गिरेगी वो बह जाएगी। गभीरम, आप बहुत गहरे हैं, गंभीर गहरे, भगवान आप आज जगत का, इस भौतिक जगत का आद अंत और मध्य है, और वेदों में आपको अनंत शक्तियों का स्वामी माना गया है, और आपकी काल की जो तीव्र नदी के प्रवाह के समान गति है उसमें लता पता सब गिरते ही गहरे पानी में बह जाते हैं, और आप ऐसे परम काल स्वरूप हो जो विश्व में सबको आप अपनी ओर आक्षिप्त कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, आप वो है जिसको अनंत शक्ति संपन्न कहा गया है वेदों में, जो इस ब्रह्मांड के आद अंत और मध्य है, और काल के रूप में आप इस जगत को वापस समेट लेते हैं, जैसे गहरी तीव्र गति से बहने वाली नदी में गिरने वाला पेड़ पौधा घास उसके अंदर ही समा जाता है और उसके साथ चला जाता है। जो बहुत तीव्र गति से चलने वाली नदी हो बरसात में, उसमें घास या पत्ता या लकड़ी गिरे तो वो चली जाती है। ऐसे ये सारा संसार काल रूपी नदी के अंदर समय के साथ बह जाता है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि समय को कभी कभी काल स्रोतो, मतलब काल की लहरें कहा गया है। और भौतिक जगत में जो कुछ है समय या काल के कारण बहता जाता है, इसका मतलब जीर्ण होता जाता है, टूटता फूटता जाता है और समाप्त होता जाता है। इसलिए काल को भगवान का ही प्रतिनिधि कहा गया है। वैसे आज हम पढ़ा रहे थे काल, 10वें अध्याय भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में काल 3 जगह पे आया है। एक काल है 30वें श्लोक में, फिर 33 और फिर 34 में, तीनों में भगवान की काल विभूति और तीनों में उसका अर्थ अलग है। एक काल संसार के चीजों को समय के साथ तोड़ मोड़ के समाप्त करता है, दूसरा काल प्रलय के रूप में आता है जो संकर या संकर्षण का स्वरूप हो जाता है, और तीसरा काल मृत्यु के समय सब कुछ हर लेता है, विशेष रूप से हमारी स्मृति को हर लेता है, हमें कुछ नहीं याद रहता। और ये चौथा काल का स्रोतों के रूप में प्रवाह है तीव्र गति से काल की नदी के अंदर जो कुछ भी गिरता है भौतिक जगत का वो सब बहज के चला जाता है। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनां असि संभविष्णो दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां प्रायणं नौरिव मजतोऽप्सो। ये भगवान वास्तव में प्रजा जो है, प्रजा नाम प्रजा का स्थिर जंगम, जो भी चर अचर जगत है, प्रजापति नाम जो उनको उत्पन्न करने वाले प्रजापति मरीचि आदि हैं, असी संभव विष्णु हो, उन सब के आप सृजन करने वाले हो, आप ही उनके आदि सृष्टा हो, प्रजा के प्रजापतियों के आप आदि सृष्टा हो, चर अचर जगत के प्रजा प्रजापतियों के आप सृष्टा हो। दिवै औकसाम, जो देवलोक में रहते हैं, इसका मतलब स्वर्ग आदि में रहते हैं, औकसाम वहां के रहने वाले देव, हे भगवान देव च्योतानाम, जो देवता है जो इस समय अपने स्थान से, अपने पद से, अपने राज से च्युत हैं, गिर पड़े हैं, बलि महाराज के कारण उनको स्वर्ग त्यागना पड़ा है, परायणम, वो आपके शरण में है। और आप क्या है, नौ हो, एक नौका है, एवस नौका के समान है, मजत्ता वो डूब रहे हैं अपसु जल में। भगवान आप आदि सृष्टा है सारे चर अचर जगत की सृष्टि के, और आप प्रजापतियों के भी सृष्टा है। ये मेरे नाथ, नाव के समान आप ही एकमात्र डूबते हुए जल में व्यक्ति के लिए आशा है, आदमी के लिए, जल में डूबते हुए आदमी के लिए नौका के रूप में एकमात्र आप ही आशा है, एकमात्र आप ही देवताओं का शरण है, जिनके शरण में आए हैं बिचारे, जो इस समय अपने स्वर्ग लोक के अधिपत्य से पतित हो चुके हैं, वहां से उनको निकाला जा चुका है। हे जगत के सृष्टा, देवताओं के शरण, उन देवताओं के आप शरण हैं जो अब स्वर्ग से निकाले गए हैं, आप तो जीवों के भी शरण है, चराचर जगत के शरण है, आप प्रजापतियों के भी शरण है। और उदाहरण ये है कि जैसे नौका एकमात्र आशा होती है, जल में डूबते हुए व्यक्ति की एक एकमात्र आशा है, प्रजा की, प्रजापतियों की और देवताओं की। संभ विष्णु हो, इसका मतलब सृष्टि करता, और जो सृष्टि करता है वो ही उसका ही शरण लेना है, उसी के ही शरण में है प्रायणम। कौन? सारे जीव। और इसके साथ ये अध्याय पूरा होता है और ब्रह्मा जी की प्रार्थना भी पूरी होती है। फिर वहां भगवान वामन देव का प्रकट्य होगा और वामन देव के प्रकट्य समय सारे देवता और सब देवता आएंगे और बहुत सुंदर उनको उपहार देंगे। और फिर वामन देव प्रकट होके ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में छाता लेकर, दंड लेकर, मेखला लेकर और बरूच भृगु कच्छ जो गुजरात में है नर्मदा के किनारे जहाँ बलि महाराज का यज्ञ हो रहा है वहाँ चलेंगे छोटे ब्राह्मण बटू ब्राह्मण बनकर। तो इसमें प्रार्थनाएं तो नहीं है लेकिन सब देवताओं ने जो जो उपहार दिए हैं बलि महाराज को उसका वर्णन है। अब हम 22वें अध्याय इसी स्कंद में, अब बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव गए ब्राह्मण के रूप में। बलि महाराज ने उनका प्रकाश को देख के सारे ही आश्चर्यचकित हो गए कि सूर्य तो सुबह उदय हुआ, ये दूसरा प्रकाश कहाँ से आया? और सहस्र सूर्यों का प्रकाश जिस भगवान से आता है वही तो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। आदित्या नाम अहम विष्णु, जो भगवान 10वें अध्याय भगवत गीता में कहते हैं ना, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, वो भगवान वामन देव ही मेरी विभूति है। तो यह है भगवान का अवतार, लेकिन भगवान ने इसको अपनी विभूति के रूप में, क्योंकि आश्चर्य विभूति एक आश्चर्यजनक होती है और ये भगवान का अवतार विभूति के रूप में यह वर्णन किया गया। और वामन देव को देखकर बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने हाथों से उनके चरणों को धोया और उस जल को अपने सर के ऊपर रख धारण किया। कितना बड़ा भाग्यशाली है बलि महाराज, जिस भगवान वामन देव के चरणों से गंगा उतरती है वो पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में जाती है, फिर स्वर्गलोक में जाती है, फिर धरती पे आती है तो शंकर जी की जटाओं में जाती है, फिर सामान्य लोगों को आचमन करने को मिलती है। लेकिन उसी चरणों को अपने हाथों से धोकर बलि महाराज ने उस चरणामृत को अपने सर के ऊपर धारण किया। कितना भाग्यशाली, एक बार नहीं दो दो बार चरण धोने का मौका मिला। और बलि महाराज और वामन देव के बीच में वार्तालाप होता है जिसमें बलि एक महादानी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और भगवान वामन देव एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के धर्म का वहां परिचय देते हैं। और तीन पग केवल अपने ही नाप की जमीन मांगते हैं, जिसके ऊपर बलि महाराज आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, विद्वानों जैसी बातें करने वाला बालक मांगने नहीं आता है, एक बार बलि के दरवाजे से मांगने वाला कहीं और मांगने नहीं जाता। अब संकल्प करने के समय भगवान ने बलि के गुरु शुक्राचार्य की मति को भ्रमित कर, शुक्राचार्य की मति को भ्रमित कर दिया। जो भी एक भगवान की विभूति है 10वें अध्याय भगवद गीता में, कवि नाम उष्णा कवि ही, कवियों में विद्वानों में मैं उष्णा कवि शुक्राचार्य का सूचक है, तो उसको भ्रमित कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने जो कहा जो वो सत्य इतना था कि गुरु का क्या काम है, शिष्य को भगवान का दर्शन कराए। और शुक्राचार्य कहते बलि महाराज ये जो तुमसे ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है ना ये विष्णु है, तो क्या ठीक कह रहा था कि गलत कह रहा था? सच्च कह रहा था, ये तो गुरु का धर्म है, परिचय तो कराया ये विष्णु है, परंतु कहता इसको दो मत, जानने के बाद भी उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया भगवान ने, कहते हैं इसको मत दीजिए कुछ भी दान में, ये सब छीन लेगा, ये आपकी कुल का शत्रु है। बलि महाराज ने अपने वचन को सत्य करने की कहा कि धरती जूठे का भार नहीं उठाती, मुझे सब कुछ मेरा हर जाए, यमराज का दंड मिले, मुझे उसका भय नहीं है, परंतु एक ब्राह्मण को वचन किए हुए को मैं तोड़ दूं ये मैं सह नहीं सकता। गुरुदेव अब मेरा सब कुछ जाए तो जाने दिए, मैं अपने वचन के ऊपर अटल रहूंगा। और उसने संकल्प करके जब दान देने लगे तो वो त्रिविक्रम बन गए, वामन त्रिविक्रम बन गए, और दो एक पांव में तो ये सारा भूमंडल माप लिया, दूसरे पांव में स्वर्ग आदि लोक माप लिए, और ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर जब उनके चरण का सीधे पांव के अंगूठा ब्रह्मांड के पर्दे को भेदन करने लगा तो कारण सागर का जल गंगा के रूप में उनके चरणों को धोके नीचे गिरा। फिर वामन देव अपने छोटे उसी रूप में आ गए, त्रिविक्रम से वामन बन गए, और बलि महाराज को कहने लगे बड़े दानी बन रहे थे, कहां रखूं तीसरा पांव बोलो। और वरुण पास में बांधने के लिए कह दिया और उसको रस्सियों में बांधा गया। उस समय बलि महाराज वामन देव को अब जो कहने जा रहे हैं ये बलि महाराज की प्रार्थना है वामन देव को, और फिर ब्रह्मा जी आएंगे, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली प्रार्थना करेगी, फिर ब्रह्मा जी आके कहेंगे और प्रहलाद महाराज भगवान की प्रार्थना करेंगे। तो ये इस प्रसंग में कुछ प्रार्थना है, आइए 8:22 के पहले श्लोक में लिखा है, श्री शुक उवाच एवं विपरकृतो राजन बलिर भगवत्ता असुरः विद्यमानो अपि अभिनात्मा प्रत्याहाविकल्वं वचः। ऐसे ऊपर से देखा जाता है कि महाराज परीक्षित भगवान ने बलि महाराज के साथ धोखा किया, या कहा जाए कि छल किया, परंतु बलि महाराज अपने संकल्प में दृढ़ थे। उन्होंने सोचा कि मैंने अगर मेरा वचन पूरा नहीं किया है तो मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा, ये उनका भाव था। तो इस 22वें अध्याय में बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, विद्यावली और ब्रह्मा भगवान की महिमा गाएंगे, फिर भगवान दया करके बलि महाराज को आशीर्वाद वरदान देंगे। जिस बलि महाराज को भगवान ने बांधा था उसी के सूतर लोक के अंदर भगवान बलि महाराज के द्वारपाल खड़े होंगे, प्रेम की रस्सी से बंधे हुए। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो विप्रकृतः का मतलब ऐसा कार्य था जिससे बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया गया, परंतु क्यों किया गया कि वो सत्य से विचलित हुए, लेकिन वो सत्य से विचलित हुआ नहीं, विद्यमानः लेकिन नहीं हुआ। तो बलि महाराज क्या कह रहे हैं एक श्लोक आज पढ़ेंगे, कल फिर इसके आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। श्री बलिर्वाच यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मिरितम तम न भवेत प्रलंबनम पदम तृत्यम कुरुश्रेणी मे निजम। यदि अगर उत्तम श्लोक भवान, हे भगवान उत्तम श्लोक, मम इरितुम मेरा वचन जो मैंने आपको दिया था, मेरा वायदा, वचो वेलिकम आप समझते हो कि झूठा हो गया है, वेलिकम का मतलब झूठा हुआ, सुरवर्य मन्यते हे देवताओं के सुरवर, आप अगर ऐसे मानते हैं करोमि ऋतम मैं उसको सत्य करूंगा, मेरे वचन को सत्य करूंगा, इसको झूठा नहीं होने दूंगा। और प्रलंबन का मतलब है मैं धोखा नहीं करूंगा। आपका तीसरे चरण के लिए जगह नहीं है ना, इसको मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। ये तीसरा आपका चरण मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। बलिराज कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं, हे उत्तम श्लोक, देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं उत्तम श्लोकों में, वेदों में जिनका वर्णन है, अगर आप ये मानते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया, तो निश्चित रूप में मैं इस अपने वचन को सत्य करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़ संकल्प है मेरा, मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। कृपा करके आप तीसरा अपना चरण मेरे इस सर के ऊपर रखिए। मुझे कपटी नहीं कोई कहे कि मैंने आपसे कपट किया है, इसलिए आप ये रखिए। बलि महाराज ने व्यंग और विनोद में भगवान को उत्तम श्लोक कहा है। ये भाव चक्रवर्ती पाद ने भी दिया है और ये भाव शिला श्रीधर स्वामी ने भी दिया है। ये उत्तम श्लोक इस संबोधन के द्वारा बलि व्यंग्य करते हैं, व्यंग करते हैं, मेरी प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, आपने वामन रूप से मांगा और उसके बाद आपने दूसरा रूप त्रिवरंग का धारण कर लिया, फिर भी यदि आप असत्य मानते हैं तो भी इसमें सत्य कर रहा, इसे मैं सत्य कर रहा हूं, मेरा कथन कपट न बने। आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रख दें, आप ये न माने कि दो पगों से विश्व को नाप लेने वाले मेरे लिए तुम्हारे सिर पर्याप्त नहीं होगा, ऐसे मत मानिए। वित्त या धन के द्वारा यदि आपके दो पग पूरे हो गए हैं तो वित्तमान तो वित्त से अब की अपेक्षा में अधिक ही मूल्यवान होता है। भाई धन से धनवान तो अधिक मूल्यवान है ना, जिसने धन कमाया है, अतएव ये उन दोनों पगों से अधिक ही होगा। ये मेरा सर सामान्य नहीं समझिए, इसको आप स्वीकार कीजिए, इसके ऊपर अपना चरण रखिए। भाई मैंने अपने इस बुद्धि के बल से, इसी दिमाग से इस धरती के ऊपर विजय प्राप्त की थी और अपनी यज्ञ आदि से मैंने स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति की थी, तो दोनों को करने वाला मैं तो अभी बैठा हूं ना, तो ये जो अपना अपने अहंकार को अर्पण करना होता है ना, इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन का उदाहरण है, अपने आप को अर्पण करने वाला। सो बलि महाराज ने कहा, हे विश्व व्यापक देवताओं के द्वारा पूजने होने पूजनीय भगवान, ये उत्तम श्लोक जो है विनोद में कहा है, व्यंग में कहा है, आपने वामन के रूप में तो तीन पग जमीन मांगी थी और जब लेने का समय आया तो बहुत बड़े त्रिविक्रम बन गए, विराट रूप धारण कर लिया, और पहले तो आपने ब्रह्मचारी के रूप में कुछ नहीं मांगने की इच्छा की, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आवश्यकता के ज्यादा ब्राह्मण ब्रह्मचारी को नहीं मांगना चाहिए, और आपने बिल्कुल लोभ लालच नहीं दिखाया, ऐसे भगवान हम भक्त आपके अमृतमय लीला के वचनों से बहुत ही विमोहित होते हैं और आनंदित होते हैं। एक तरफ कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ सब कुछ ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, हम पागल हो जाते हैं आपकी ऐसी बातों के और ऐसी महिमा को। आप लक्ष्मीपति हो फिर भी भिखारी बन के मेरे दरवाजे पे आए और निर्लज होके अधिक लेने लगे, मांगा तीन पग और ले लिए पूरी तीनों लोक। और ब्रह्मचारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आए और धोखे का काम किया और भौतिक चीजें ही आपने प्राप्त करने का प्रयास किया और शांति भी नहीं है, क्रोधित भी हो गए और मुझे दंड भी दे रहे हैं। परंतु ये सब आपके स्वाभाविक गुण हैं। आपने मेरे विद्वान गुरु शुक्र आचार्य का मति को भ्रमित कर लिया, बुद्धि को नाश कर दिया, जो शास्त्रों को जानता है उसको मति भ्रष्ट कर दिया, आपने इंद्र और देवताओं का पक्ष लिया, परंतु उनके ऊपर आपने कृपा तो कुछ भी नहीं की। और मैं आपकी इस मधुर आनंदमय लीलाओं का साक्षी हूं, जिसने जो आनंद के समुद्र में मगन हो गया हूं कि आपने मेरे साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, कितनी मेरे ऊपर कृपा की है। देवताओं का पक्ष लेके उनको राज दे सकते हो, लेकिन आपके चरण तो मैंने धोए, कभी किसी देवता ने धोए हैं क्या? इसलिए बड़े बड़े ऋषि आपकी बड़ी महिमा गाते हैं, ये आपका अद्भुत है। लक्ष्मीपति भिखारी बन जाए और बलि के दरवाजे पे आए, ये आपकी महिमा अद्भुत है। अगर आप ये मानते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया, ये असंभव है। आपकी इच्छा अपने भक्तों के ऊपर अन्याय से विजय प्राप्त करने की और अपने भक्त को झूठा संसार में दिखाने की तो नहीं होती। ये देवताओं से पूजनीय भगवान, इसका कारण है कि देवताओं ने आपको प्रार्थना की होगी कि मुझसे ये धरती लेके और स्वर्ग लेके उनको दे दो ताकि वो भोग करें, मैं अपने वचन को सत्य करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा। परंतु आपके वचनों से देवताओं को धोखा मिलेगा, कपट होगा देवताओं से, क्योंकि उनको आप देंगे धर्म अर्थ काम, उनको देंगे स्वर्ग का राज, परंतु आपके चरणों का अमृत तो उनको नहीं मिला, चरणों का अमृत तो मुझे मिला ना। ये बहुत बड़ा मधुर भाव है। रामचंद्र कहते हैं केकई को के मैया आपने अन्याय कर दिया, भरत को छोटा अयोध्या का राज दे के मेरे को पूरे वन प्रदेश का राज दिया, लोग कहेंगे कि केकई ने अन्याय किया, अपने बेटे को कम दिया और राम को ज्यादा दिया। तो ये आपने अन्याय किया देवताओं के संग, उनको तो दे दिया स्वर्ग का राज और मेरे को दे दिया अपने चरण कमलों का अमृत। तो आप अपना तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रखिए और ऐसे मत समझिए कि दो अगर आपके चरणों ने अगर ब्रह्मांड में सब कुछ नाप लिया है तो मेरा ये सर छोटा पड़ेगा। धन से धनवान महान होता है, वो अपना झूठा अहंकार जिसके द्वारा संसार में सभी फंसे हुए, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं, मैं आत्मनिवेदन करता हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं बलि महाराज भगवान वामन देव का जो उद्देश्य था कि देवताओं को उनको उनका राज्य वापस दिलाना था, इसलिए बलि के यहां ब्राह्मण के रूप में याचक बन के आए। याचक कहने भिखारी को, मांगने वाला। वास्तव में बलि भगवान का उद्देश्य बलि से छल करना था, परंतु बलि महाराज इसमें आनंद ले रहा है कि भगवान छलने आए हैं लेकिन हैं लक्ष्मीपति, बने हैं याचक, बड़ा आश्चर्य है। और ये भगवान की लीला भक्तों को बहुत महिमा गाने का अवसर देती है। इसका अर्थ है कहा जाता है भगवान सदा ही सत्य हैं, ये सच है, वो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। बलि महाराज इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कह रहे हैं, आपकी बड़ी महिमा उत्तम श्लोकों के साथ के द्वारा वेदों में ऋषियों के द्वारा वर्णन है, और देवताओं के बिहाफ पे, देवताओं के हित के लिए आपने ये छोटे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और मुझसे छल करने के लिए आए हैं, और आपने कहा 3 पग मेरे ही जमीन चाहिए, परंतु फिर आप बहुत बड़े त्रिवर्कम बन के 2 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और ये आपने इसलिए किया कि आपको देवताओं का ही हित करना था, आप इसको छल नहीं मानते, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई भक्त नहीं कहेगा, मैं तो असुर हूं, परंतु फिर भी आप लक्ष्मीपति हो, आप मेरे दरवाजे पे मांगने को आए हो, मैं निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करूंगा, और जरम जो मेरा सामर्थ्य है वो सारा लगाकर मैं आपकी संतुष्टि का सब प्रकार से प्रयास करूंगा, और मैं अपने वचन को सत्य करूंगा। अभी तक मेरे पास एक संपत्ति है, मेरा ये शरीर, और विंध्यावली कहेगी पत्नी के पति देव शरीर भी हमारा कहाँ है, ये भी तो भगवान का है दिया हुआ। प्रहलाद महाराज कहेंगे अच्छा किया, हम असुर आपकी संपत्ति को अपनी मांगने की मूर्खता करते हैं, आपने वापस लेके हमारे ऊपर करुणा करके, हमारे अहंकार का दमन करके हमें निम्रता का जो है आशीर्वाद दिया है, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में आएगा। तो फिर अब मैं इस हमारे मेरा शरीर जो अब मेरी संपत्ति है, ये मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं, अपना 3रा चरण मेरे सर के ऊपर रखिए, ये है अहंकार का अर्पण करना, मैं पने का अर्पण करना, झूठा अहंकार का अर्पण करना, ये शरणागति का सूचक है। इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन का उदाहरण है, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को अर्पण करना। बलि महाराज सारी संपत्ति के स्वामी थे, तो संपत्ति से तो महान ही होंगे ना, अभी तो भगवान ने उसकी संपत्ति को ही हर लिया था, परंतु बलि महाराज का अहंकार तो उसके पास था ना, वो अपने शरीर का तो स्वामी था ना, तो भगवान के चरणों के लिए उन्होंने अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया। बिभेमिनाहं निर्यात पदच्युतो, मैं अपने राज को त्याग दूं या नरक में चला जाऊं मैं उससे नहीं डरता। न पाश बंधाद व्यसनाद उर्तययात, वरुण के पास से बंधने से जो दुख हुआ है उससे भी मुझे कोई भय नहीं है। नैवार्थ कृचाद भवतो विनिग्रहात, अब मेरा अर्थ कृचित सब धन छिन गया है, मैं गरीब हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने सब ले लिया है और मुझे विनिग्रह मेरे को दंडित किया है, और मैं असाधु हुआ, मैं दुखी हूं और मेरी निंदा हो रही है, असाधु वादाद भ्रशम उदविजे यथा, मेरा सब धन चला जाए उसका मुझे कोई भय नहीं है, नरक में जाके गिरूं उसका भी मुझे कोई भय नहीं है, परंतु जो वरुण के पास से आपने मेरे को बांध दिया है और मुझे दंडित किया है, इससे जो मेरा अपमान हुआ है, जो मेरा जा कहा है, मेरी मेरी अपयश हुआ है, उसका मुझे बहुत बड़ा भय है। मुझे इनका भय नहीं है, मुझे भय है अपयश का। अपयश का मतलब वचन झूठा हो जाएगा, इसका मुझे भय है। मैं नरक में रहने से नहीं डरता हूं, मेरे पद से च्युत हो जाऊं, मेरा राज चला जाएगा, मुझे परवाह नहीं है। वरुण के पास में बंधा हूं और मैं दुख भोग रहा हूं, संकट में हूं, मेरा सब धन चला गया है, आपने मुझे दंडित किया है, उसका भी मुझे कोई भय नहीं है। बस मुझे एक भय है, आपके भक्त कहीं मेरा अपयश न गाए के बलि भगवान को दे नहीं पाया, ये मैं सह नहीं सकता। तो बलि महाराज जब कह रहे हैं मेरे सर के ऊपर पांव रख तो रखो, तो भगवान वामन देव कहते हैं आप क्या कहते हो कि मैं आपको वरुण पास से मुक्त कर दूं और नरक में जाने से रोक दूं, क्योंकि जो वचन अपना पूरा नहीं करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। अर्थकृष्णा का मतलब है धन जाने से जो संकट आता है उसकी परवाह नहीं है, परंतु भक्त मेरी जो निंदा करेंगे, अपयश करेंगे कि बलि जैसे दानी ने ब्राह्मण के साथ धोखा किया, वचन देके पूरा नहीं किया, ये मैं सह नहीं सकूंगा, इसका बहुत बड़ा बहुत बड़ी शिक्षा है दुनिया के अंदर। अपने वचन को सत्य करने के लिए बलि महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ा अपयश है। प्रभुपाद जी लिखते हैं बलि महाराज ने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण करके पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया, फिर भी वो भक्तों के द्वारा ये अपजस से भयभीत थे कि कहीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान से बलि ने धोखा तो नहीं किया, अपना वचन नहीं पूरा किया, ये अपजस नहीं सह सकते। वो अपने यश के विषय में जानते थे, उसके विषय में गंभीर विचार किया कि कहीं मेरा अपयश न हो, और भगवान ने ही उसको, प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ने ही उसको अच्छा सा हृदय से प्रेरणा दी, अच्छा सा उनका मार्गदर्शन किया, जैसे उसकी निंदा न हो, उसका अपयश न हो। उसने अपने सर को भगवान के चरणों में अर्पण करने का संकल्प किया। वैष्णव, प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव कभी भी दंड से भयभीत नहीं होते। नारायण परः सर्वे न कुतश्चित विभेयते, ये भागवत में लिखा है। नारायण परायण जो भगवान के शरणागत है वो कहीं नहीं डरते हैं, नरक में हो, स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, परंतु अपयश जो है वो भी भगवान की सेवा में सेवा का वचन करके पूरा नहीं कर पाए, उससे बलि महाराज कहते हैं मुझे बड़ा भय होता है। कल चौथे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। पुंसां श्लाघयितरमं मन्ये दण्डम् अहृतमारपितं यं न माता पिता भ्राता स्वर्द चादिशन्ति। कभी कभी माता पिता भाई मित्र और कोई शुभ चिंतक दंड देता है, परंतु उनके दंड का जो अपने अधीन को दंड देते हैं, आप तो परम पूज्य हैं, आपके आपका दंड जो है ये उन सबसे भी महान है, मैं मानता हूं ये दंड आपका मेरे लिए बड़ा उपहार है। तो आइए इसका कल करेंगे श्रवण। हरे कृष्ण। हाँ जी
प्रभु जी, दो चीजें थोड़ा नहीं समझ आती इसमें, जैसे एक तो मति भ्रष्ट भगवान ने करी एक वो, और दूसरा क्या जैसे हम सुनते हैं कि ये गुरु अवज्ञा हुई एक तरह से बलि महाराज, ये दो पॉइंट थोड़ा सा।
बलि देख कोई भी कार्य करता है उसके पीछे भगवान तो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनका हाथ तो होता ही है। तो यहाँ चक्रवर्ती लाभपाल लिखते हैं कि मेरे विद्वान गुरु जो आपकी विभूति है उसकी आपने मति भ्रष्ट कर दी और उसको आपकी मेरे को आपकी सेवा करने से वो रोकने लगा, जबकि गुरु का काम है भगवान की सेवा में लगाना, लेकिन वो उससे रोकने लगा, वो आपने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और वैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि जो पुरोहित होते हैं उनको अपने यजमान के धन के जाने का बड़ा भय होता है कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, कि उन्हीं के पुरोहित को यजमान से ही जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से उनका जीवन निर्वाह होता है। तो शुक्राचार्य को ऐसे भगवान ने कि भगवान ही सबका निर्वाह करते हैं ये भूल गया, उसकी बत्ती मति भ्रष्ट हो गई, उसने समझा कि हमारा राजा अगर कंगाल हो जाएगा, सब कुछ भगवान छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये उनका जो जो व्यक्तिगत स्वार्थ था ये मति भ्रष्ट का सूचक होगा। और दूसरा दूसरा क्या प्रश्न था? गुरु अवज्ञा
जी,
ऐसे तीन उदाहरण है कि माता भगवान की सेवा में रुकावट डाले तो उसका त्याग किया जा सकता है, पिता भगवान की सेवा में बाधा डाले तो उसका त्याग किया जाता है, गुरु भगवान की सेवा में बाधा डाले तो उसका त्याग किया जा सकता है, ये शास्त्र का निर्णय है। माता केकई का उदाहरण है, भरत राम की सेवा में रहना चाहता है और वो राम को सेवा राम की सेवा से उनको अलग कर रहे थे, इसलिए माता को त्यागने के लिए तैयार हो गए। और पिता हिरण्यकशिपु है जिसने भगवान की सेवा से प्रह्लाद को रोकना चाहा तो उस पिता का पिता के रोकने से नहीं रोका गया, और ये गुरु के उदाहरण में शुक्राचार्य है। तो ये तीनों सामान्य रूप से सारे समाज के गुरु है, माता गुरु है अपने संतान का, पिता गुरु है और जो आचार्य है वो गुरु है। परंतु ये तीनों गुरु अगर जो गुरु का मुख्य कर्तव्य है कि जीव को भगवान के शरण में ले जाना, उसके विपरीत कोई शिक्षा देते हैं तो वो त्याज्य हैं। परंतु बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्यागा नहीं, परंतु उसके एक वचन का जो है नहीं माना कि इसको आपने ओम नहीं कहा है अभी तक, आप झूठे नहीं कहलाओगे, इसको मना कर दो दान देने से। तो बलि महाराज ने ये उनकी बात नहीं मानी। तो वैसे तो गुरु अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध है, परंतु ये गुरु अवज्ञा भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए इसमें कोई दोष बलि महाराज को नहीं। बलि महाराज महान भगवान के आत्मनिवेदन के भक्तों में श्रेणी में आए, भगवान उसके द्वारपाल बन गए। और शुक्राचार्य तो फिर भी बलि महाराज का पुरोहित अभी भी पुरोहित है ही असुरों का। तो इसमें इसके लिए सिद्धांत ये है कि हायर काज के लिए लोअर काज को अगर छोटा छोड़ा जाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। हायर काज था भगवान को संतुष्ट करना, उसके उसके विपरीत दूसरा उससे छोटा काज था गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना। तो भगवान प्रसन्न हो और गुरु अप्रसन्न हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि गुरु की शिक्षा है भगवान को प्रसन्न करना। तो गुरु की वास्तविक शिक्षा को तो हम पूरा कर ही रहे। हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ जी शुद्ध शत तो बोलिए। क्या है
जो बलि महाराज जो है वो उसकी संपत्ति होने से नहीं डर रहे और नारकीय जीवन में जाने से नहीं डर रहे और जो भगवान जो है दंडित होने से नहीं डर रहे, लेकिन वो अपकीर्ति से डर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वो अपकीर्ति, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं।
अपकीर्ति का मतलब भगवान की सेवा करने में त्रुटि हो गई, ब्राह्मण से धोखा हो गया, ये अपकीर्ति। और अपकीर्ति मेरी अपनी व्यक्तिगत हो जाए कोई बात नहीं, परंतु ये कीर्ति हो रही है कि मैं एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को दिया हुआ वचन नहीं पूरा हो सका, मैं बलि के नाम से प्रसिद्ध हूं, महान दानी के रूप से प्रकट हूँ, अपने दान करने में एक छोटे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को वचन पूरा नहीं किया, ये अपकीर्ति मेरी हो, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो इससे सीखना ये चाहिए कि हमारे वचन के तोड़ने से, और वो वचन भी अगर भगवत सेवा का हो या वैष्णव सेवा का हो, तो उससे जो अपकीर्ति होती है वो अपकीर्ति बहुत बड़ी भारी गिलानी कराती है। ऐसे बलि महाराज का भाव है कि मैं अपने सेवा में और वो एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को दिया हुआ वचन नहीं पूरा कर सकूंगा, ये मेरी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, मैं अपने वचन को सत्य करूंगा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? एक सीधी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में अगर धर्म का संकल्प करना चाहिए तो उसको पूरा करना चाहिए। बलि महाराज से ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके, हरे कृष्णा।